अच्छा, फिर इन्होंने यहाँ पे एक अगला एक आंसर किया है कि अगर ये मैं नहीं हूँ, है ना, ना मैं शरीर हूँ ना मन हूँ, फिर मैं यहाँ पे आया ही क्यों हूँ, मैंने जन्म ही क्यों लिया? ये तो सबका सवाल आता है, अगर ये सब झूठ है, माया है, मैं हुई ही नहीं तो आया क्यों हूँ? तो इसका आंसर भी यहाँ पे शंकराचार्य ने दिया है कि वो है डिज़ायर्स की वजह से, वो जो डिज़ायर्स हैं, ओके, और क्योंकि तुमने उन डिज़ायर्स को मेरी डिज़ायर्स मान लिया है, क्योंकि हमने, हमारी ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये बहुत पुरानी है ना, तो मन डिज़ायर करता है, देखो आत्मा डिज़ायर भी नहीं करती, जो आप हो, आत्मन हो, उसकी कोई डिज़ायर नहीं है, वो डिज़ायरलेस है, लेकिन ये मन तो डिज़ायर्स का पुतला है, मतलब वो बना ही डिज़ायर्स की वजह से है ना, उसकी हमेशा डिज़ायर्स रहती हैं, और क्योंकि तुम उस मन को मैं मान लेते हो तो वो तुम्हारी डिज़ायर्स बन जाती हैं, तुम उसके साथ एक हो गए हो, और वो डिज़ायर्स कभी ख़त्म ही नहीं होती, और वो डिज़ायर्स आती जाती हैं, इसलिए तुम बार बार इस शरीर में आते ही रहते हो। ये अगर जिन्होंने वो वाला अटेंड किया हो, श्री युक्तेश्वर जी का जब सेशन किया था ना एस्ट्रल वर्ल्ड वाला, तो उन्होंने भी बिल्कुल यही बताया था कि आपकी कौन सी इच्छाएँ हैं, अगर आपकी इच्छाएँ ऐसी हैं जो इस मनुष्य तल पे आपको पूरी हो सकती हैं सिर्फ, तो आप बार बार मनुष्य का जन्म लोगे, ठीक है। जब आपके मनुष्य की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, मतलब मनुष्य लेवल की, फिर जो नेक्स्ट होता है एस्ट्रल में, और बहुत सारे लोग हैं, फिर आपका वहां पे जन्म होता है, तो आपकी जो एस्ट्रल डिज़ायर्स होती हैं, फिर कॉजल डिज़ायर्स होती हैं, तो आप कौन से लोक में हो, तो अगर हम यहाँ पर पृथ्वी लोक पे हैं, जो हम सबको पता है कि हम हैं, इसका मतलब हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं बची हुई। अगर आप शरीर में हो, इसका मतलब ही ये है कि आपकी कुछ इच्छाएं हैं यहाँ पे ही जो पूरी हो सकती हैं, इसीलिए आप यहाँ पे हो। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं बची, तो ऐसा कहना भी सही नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी इच्छाएं पूरी ख़त्म हो जाएंगी, आप यहाँ पे बचोगे ही नहीं, आप एक पल भी इस मृत्यु लोक में नहीं रह सकते अगर आपकी इच्छाएँ पूरी की पूरी समाप्त हो जाएँ, ठीक है। तो वो इच्छाओं की वजह से आप बार बार आते हो। फिर उन्होंने यहाँ पे ना एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, उन्होंने बोला कि गुरु माँ ने बताया, ये तो अपना वो जो बता रही हैं, कि वो किसी को मिलने गई होंगी यूएस, जब यूएस वगैरह जाती थी तो कोई एक बिजनेसमैन आया, तो उसने बोला कि मेरे लंदन में इतने सारे हॉलीडे होम्स हैं, मेरे यहाँ हैं वहाँ हैं, अभी नेक्स्ट मैं पेरिस में बनवा रहा हूँ, मुझे ना पेरिस बहुत अच्छा लगता है, और अब मैं काम कर रहा हूँ कि मैं पेरिस में बनवाऊँगा। और फिर कुछ थोड़े दिनों के बाद उनको पता लगा कि उस जो बिजनेसमैन था उसकी डेथ हो गई, तो वो ये बता रही हैं, कहती हैं लेकिन देखो उसका लास्ट जो इच्छा थी वो क्या थी, कि मुझे पेरिस में घर बनवाना है, तो मतलब पक्का उसको वापस आना ही आना है, ये इच्छा बच गई थी कि मुझे पेरिस में घर बनवाने हैं। तो अगर तुमने कोई इच्छा की हुई है और वो इस जन्म में पूरी नहीं होती, तो वो पूरी करने के लिए तुम वापस आओगे, क्योंकि वो जो इच्छाएँ हैं दे वर्क लाइक अट्रैक्टर्स, वो आपको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचती हैं। देखो सपोज आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, लेट्स से हम लोग सब जाते हैं मार्केट में, ठीक है, हम लोग सब एक मार्केट में जाते हैं और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अब मार्केट में जाके मेरी नज़र किस कौन सी वाली शॉप्स कैच करेंगी अगर मुझे भूख लगी है?
खाने पीने वाली,
बिल्कुल, मेरा ध्यान वही होगा, मुझे होगा चलो पहले खा लेते हैं, चलो पहले चल के ना उस रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं। ऑल दो वहाँ पे 1000 शॉप्स होंगी, लेकिन मुझे खाने वाली ही शॉप नज़र आएगी, है ना। ऐसे ही लेटेस्ट से आप साड़ी खरीदना चाहते हो, आपके दिमाग में एक बहुत सुंदर सी साड़ी खरीदनी है इस शॉप से, वहाँ पे दुकानें बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ऑलरेडी एक डिज़ायर है मुझे वो साड़ी खरीदनी है, आपको वो साड़ी वाली शॉप ही नज़र आएगी सबसे पहले। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब भी हम बाज़ार जाते हैं इतनी शॉप्स होती हैं, और हम जैसे एज अ फैमिली भी जाते हैं कितनी बार, लेकिन हर किसी की नज़र अलग अलग चीज़ों पर पड़ती है, होता है कि नहीं? वो किसके हिसाब से होता है? आपकी डिज़ायर की वजह से होता है। तो आपकी, मेरी डिज़ायर मुझे रेस्टोरेंट में खींच के लाएगी, किसी और की डिज़ायर उसको साड़ी शॉप पे लेके जाएगी, किसी और की डिज़ायर उसको ज्वेलरी शॉप पे लेके जाएगी, है ना। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारी इच्छाएं हैं, उस इच्छा की वजह से ही वो हमें उस जगह पे हमारा जन्म होता रहता है। तो अगर आपकी इच्छाएँ ऐसी हैं जो सिर्फ मनुष्य जीवन में ही पूरी हो सकती हैं, तो बार बार वो जो जीव है वो मनुष्य जीवन में आएगा ही, है ना। जैसे उसको अगर पेरिस में घर बनवाना है, तो पेरिस तो पृथ्वी लोक पर ही है, तो उसको यहीं पे आना होगा।
हाँ जी, हाँ जी, लाइक कई डिजायर्स ऐसी भी होती हैं जो बहुत मामूली सी होती है, मतलब वो हो नहीं हो, अब इट डजंट मैटर, इट डजंट अफेक्ट यू। मेरा सर्टेन डिजायर्स, वो पूरी हो या नहीं हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, Is that also a cause of coming back?
It depends, you know, like maybe right now it may not be very important for you, लेकिन अगर वो पहले कभी भी आपके लिए important रही है, वो पहले था कि तब वो बहुत important थी, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको फिर से खींच लाए. और दूसरा तरीका ये होता है कि मतलब ये देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब इसमें कोई श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि ऐसा होगा ही या नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर जो हम आते हैं वो होता है हमारी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स की वजह से ही. अगर वो उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग थी और पूरी नहीं हुई है, और उसका एक कुछ ना कुछ प्रोसेस भी शुरू हो गया, देखो माया में हर चीज़ एक प्रोसेस में चलती है, अगर उसका प्रोसेस शुरू हो गया है तो हो सकता है उसके हिसाब से आपका ये आपको फिर से आना हो. कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं कि कुछ, आप देखो बच्चे लोग होते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, वो बस उनका जन्म होता है और बहुत जल्दी मृत्यु भी हो जाती है, हम सबका ये एक्सपीरियंस है. ओके, तो कभी कभी कुछ बहुत बहुत छोटी चीज़ों के लिए भी लोग आते हैं और चले जाते हैं. मतलब वो एक पर्टिकुलर इच्छा का, आपका जैसे इच्छा हुई कि अरे ये मेरी माँ होती, हम कई बार इच्छा करते हैं ना, अरे ये मेरी बेटी होती, अरे ये मेरा बेटा होता, सपोज ऐसे ही मन में आ गया. तो मैं मतलब पक्का नहीं यहाँ पे बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ हर चीज़ का मैटर ज़रूर करता है. तो इसको अब अगर हमारा सवाल नेक्स्ट ये होगा कि सपोज अब वो मेरी इच्छाएं हैं भी नहीं, ये किसी ने उस दिन पूछा भी था सेशन में जो हम अभी करने वाले हैं उसके लिए, कि सपोज अब वो मुझे इच्छा चाहिए भी नहीं, ओके, और अब मुझे पता लग गया शायद मैंने अनजाने में ये कर ली थी, तो फिर उसके लिए भी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो बताई जाती हैं कि आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हो, या माफ़ी मांग सकते हो, या उसको क्लियरली बोल सकते हो अपने उससे कि मुझे अब वो नहीं चाहिए, अगर आपको ध्यान में हो. और अगर ध्यान में नहीं है, चल रहा है, और क्या पता इस जन्म की इच्छा है या पुराने जन्मों की भी इच्छाएं कोई पड़ी हुई होंगी, है ना, तो हम सिर्फ अपना प्रोसेस कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा हो तो खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर की हुई है उसकी वजह से जन्म हो जाएगा या नहीं होगा, रियली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से.
लेकिन आप उसमें पूरी तरह से स्थापित नहीं हो. पूरी तरह से स्थापित होने का मतलब है कि आप दृष्टा 24 घंटे नहीं रहे,
राइट,
क्योंकि वो जो चख लिया वो तो चख लिया,
ठीक है,
वो तो नहीं जाने वाला है. लेकिन इस बीच में बहुत तुरंत ही अगर ये शरीर छूट जाता है, ये शरीर को छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब बर्थ होगा, क्योंकि डिजायर तो एक अभी भी बाकी है ना, कि मैं को उस हाइट पे जा रहा था, मैं नहीं गई, तो मेरा जो बर्थ होगा, तो क्या वो बर्थ में मुझे वो याद रहेगा, वो मेरे साथ आएगी, वो जो डिजायर सोचती है क्या आएगी, ये नहीं.
ओके, सो आई थिंक मेरे ना नेट में इशू है. मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन ये है रेणु, जो आप पूछ रहे हो कि अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है लेकिन आपकी डेथ हो गई और ये आप पूरे स्थापित नहीं हुए थे, और आपकी इच्छा थी कि आप पूरे हो जाओ उसमें, मतलब वो जो 100% है, तो वो इच्छा आपको अगले जन्म में याद रहेगी या नहीं रहेगी, ये पूछ रहे हो. ओके ओके, हाँ,
याद भले भी ना रहे, क्योंकि याद तो कुछ नहीं रहता, लेकिन ऐसी सिचुएशंस आएंगी मेरी उस जिंदगी में जहां पर मुझे वो याद दिला दिया जाएगा,
हाँ,
वो डिजायर का.
हाँ हाँ, ओके ओके, तो बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ी बात है ना, वो है आत्मज्ञान का स्वाद ले लेना, चख लेना. ओके, मतलब दैट इज, आप ये बोल सकते हो कि वो फिनिशिंग लाइन को टच करने जैसा है, है ना. तो ये तो बहुत सारे संतों ने इसका ये जवाब दिया हुआ है. जैसे अब बुद्ध हैं, सपोज हम पहले हम औरों के एग्जांपल्स लेके चलते हैं, ठीक है, फिर मैं आपका आंसर करती हूँ. कि जैसे बुद्ध को जब ज्ञान हो गया था, वो तो बहुत ही छोटे थे, उसके बाद भी वो 42 इयर्स रहे इस शरीर में, है ना, जानने के बाद भी, तो क्यों रहे, तो वो भी उन्होंने उसका बताया है कि उनकी जो पुरानी चीज़ें बची थी, जो इतने जन्मों में जो भी ली होंगी इच्छाएँ रही होंगी, या उन्होंने कुछ प्रोमिसज किए होंगे. कई बार हम बहुत सारे प्रॉमिसेस कर देते हैं. इसमें ना एक स्टोरी आती है, कहते हैं एक बार बुद्ध एक जगह पे गए एक किसी शिविर के लिए, तो बहुत सारे लोग आ गए थे वहाँ पे अटेंड करने के लिए, और बुद्ध चुप ही बैठे हुए थे, अभी बोल ही नहीं रहे थे, तो सब लोग बहुत इंतजार कर रहे थे. तो आनंद जो उनका डिसाइपल था, उसने बोला, अरे इतने सब लोग आ गए, अब आप बोलना शुरू कीजिए, सब सुनने सब तो आ गए, अब आप किसका इंतज़ार कर रहे हो. क्योंकि बुद्ध ना बार बार देखते रहते थे इधर उधर कि जैसे किसी के लिए वेट कर रहे हो. तो बुद्ध ने बोला, तभी थोड़ी देर के बाद एक लेडी आई, ओके, एक लेडी आई और बैठ गई। तो जैसे ही वो आके बैठी तो बुद्ध ने फिर अपना बोलना शुरू किया। तो फिर उन्होंने बाद में आनंद को बताया कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि एक जन्म में मैंने उससे ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रवचन दूंगा, तो वो मेरा बचा हुआ था, मुझे पूरा करना था, ओके। तो मतलब वो सिर्फ अपना जो है जानने के बाद वो चीज़ें पूरी कर रहे थे, क्लोजिंग द चैप्टर्स, ओके। ऐसी बहुत बहुत सारी स्टोरीज हमें सुनने को मिलती है, बुद्ध के जीवन में भी हैं और भी हैं। तो बुद्ध तो ऐसे थे मतलब जिनका उसी जीवन में ही समाप्त हो गया, मतलब उन नेक्स्ट 42 इयर्स में जो भी पुराना बचा था। इसका आपने एक और एग्जांपल सुना होगा, हम बोलते हैं ना, इवन जब हम पंखे का स्विच बंद कर देते हैं तो भी वो इतनी तेज़ी घूम रहा होता है लेकिन धीरे धीरे बंद होता है ना, पूरा स्टॉप होने में टाइम लगता है। तो ये है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि अगर आपने उसको चख लिया, मैक्सिमम दैट यू विल टेक इज 3 बर्थ्स आफ्टर दैट, मैक्सिमम, बिकॉज वी डोंट नो कि पुराना पीछे क्या है, कितना बचा हुआ है। आपका उस जन्म में भी ख़त्म हो सकता है और आपको अगले आगे मैक्सिमम 3 जन्म ज़रूर लगेंगे फिर भी। और हाँ, ये अगर 3 जन्म ही बचे हैं तो आपको ये ज्ञान कभी ना कभी ज़रूर आ जाएगा। आप किस उम्र में आएगा वो नहीं हम बोल सकते। जैसे मुझे तो लहरी महाशय का ही ध्यान आता है। देखो, लहरी महाशय तो इतने बड़े, मतलब बाबा जी उनको खुद उनको पूरा वॉच कर रहे थे, लेकिन फिर भी जब वो अपने 30s में, उनको बाबा जी कब मिले, जब वो अपने 30s में हो गए थे, है ना, तभी बाबा जी मिले। और हम तो इस जन्म से भी लगा सकते हैं ना रेनू, कि इस जन्म में भी हमें गुरुओं ने ढूंढ ही लिया तो आगे भी ढूंढ ही लेंगे, है कि नहीं? अगर आना भी पड़ा तो ढूंढ लेंगे।
मिलता जुलता ही था कि जैसे कि अगर इस जन्म में नहीं पूरा होता, मतलब अगर हम अनुभव, जैसे ये तो बोल रही है कि इनको आत्मज्ञान है, मैं तो वो भी नहीं मान रही कि भी हमें आत्मज्ञान भी है, वी आर जस्ट वो, तो वही कि हमें कितने जन्म लगेंगे कि आगे हम, और ये मैं नहीं पूछना चाह रही थी याद रहेगा या नहीं, बट हमें लाइफ तो फिर वही फैमिली और वही उन्हीं चीज़ों में ही हम फिर से स्टार्ट करेंगे ना सब।
ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे अभी भी इस जन्म में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स होंगे फैमिली के साथ, है ना, वही बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या फिर कुछ फ्रेंड्स के साथ, मतलब एक अटैचमेंट टाइप है, तो हाँ फिर से आप फैमिली में ही शुरू करोगे, बिल्कुल वो फिर से वापस लोग आएंगे। लेकिन अगर आप उनको इसमें ख़त्म कर लेते हो, जितना ज़्यादा आप ये कर लेते हो ख़त्म, तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट उसमें आप बहुत जल्दी, आपको हमें क्या चाहिए, मेनली गुरु चाहिए जो हमें बहुत जल्दी आके जगा सके, बता सके कि अब ये तुम्हारा रास्ता। वो कब मिलेगा उस पर डिपेंड करता है। अगर तुमको बचपन में ही मिल गया तो तुम्हारी उसी समय जर्नी शुरू हो जाएगी। अभी हम शंकराचार्य का देखें, वो तो 8 साल की उम्र में ही चल पड़े थे, है ना, तो ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब उनके भी पुराने जो भी रहे होंगे पहले, और ये भी नहीं बोल सकते एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे गुरु सिर्फ इसके लिए भी आते हैं। मेरे ख्याल से शंकराचार्य को ये बोलना कि वो ये ख़त्म करने आए थे वो भी सही नहीं होगा कहना, क्योंकि गुरु सब कुछ फ्री होने के बाद भी, इस साइकिल से कम्प्लीटली फ्री होने के बाद भी फिर से आते हैं। जैसे एक बार मैंने बताया था ना, आप स्कूल से निकल चुके हो लेकिन आप प्रिंसिपल बन के तो स्कूल में जा ही सकते हो ना, टीचर बन के तो जा ही सकते हो आप स्कूल में, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ स्टूडेंट ही ज्वाइन करना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे गुरु आते हैं सिर्फ ये बताने के लिए ही, कराने के लिए। तो हाँ, अगर आपके फैमिली के साथ बंधन बचे होंगे तो वहाँ से शुरू होगा, और अगर बंधन कम होंगे तो हो सकता है कि आप उस चक्कर में ना पड़ो, पहले से ही निकल जाओ। फिर जैसे हम सहजोबाई का एग्जांपल, एक बार जब मैंने स्टोरी सुनाई थी, वो तो शादी, मतलब उनकी शादी हो रही थी, बारात आने वाली थी, और तभी गुरु आ गए कि सहजो ये कौन से तू टेम्प्रेरी दूल्हे के लिए अपने बालों में फूल लगा रही है, और वो तो तभी उठ खड़ी हुई, है ना। तो गुरु कब आएंगे आपकी लाइफ में उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इस पृथ्वी पे आओगे डेफिनेटली पेरेंट्स तो होंगे, है ना, बिना पेरेंट्स के तो आ ही नहीं सकते, तो फैमिली में तो आओगे ही आओगे, उतना बंधन तो रहेगा ही रहेगा, है ना। उसके बाद क्या आप दूसरे बंधन में, मतलब शादी और बच्चों के बंधन में पड़ोगे या नहीं पड़ोगे, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने, आप किस लेवल तक हो। और अगर हो भी गया, अगर इस जन्म में इतना भी जान गए, अगर आप अगले बार दोबारा भी बंध गए तो कोई बात नहीं, फिर गुरु वहां से भी ढूंढेंगे निकालेंगे, है ना।
एक चीज और, जो ये डिजायर्स की बात हो रही है कि डिजायर्स के लिए हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, तो डिजायर्स कभी तो लाइक हम कह सकते हैं बॉडी के उससे भी है, और कई हम कई डिजायर्स हमारे मन में भी, माइंड में भी चलती हैं, तो क्या ये दोनों ही वो हैं या जो हम बोलते हैं वो डिजायर्स?
नहीं नहीं बिल्कुल, देखो डिज़ायर सारी मन की ही होती हैं, और जो बॉडी है वो उनको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, है ना। अब डिज़ायर, मन करता है जलेबी खानी है, अभी डिज़ायर कहाँ आती है? बॉडी को, पेट को तो नहीं चाहिए होता जलेबी चाहिए, है ना, मन को चाहिए होता है। लेकिन वो बॉडी को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको अभी शॉप पे जाना पड़ेगा, खरीदनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, वो बॉडी आपको सिर्फ सपोर्ट करती है उसको वो करने के लिए। आप देख लो कोई भी डिज़ायर आप चेक करो, बॉडी की डिज़ायर्स नहीं होती, मन की होती हैं। और वो डिज़ायर्स कब तक हमें परेशान करती हैं? जब तक मैं इस मन को मैं मान लेता हूँ तो मुझे क्या लगता है ये मेरी डिज़ायर्स हैं, इसलिए मैं उस चक्र में फंस जाता हूँ। जहाँ पे मैं फ्री हो गया कि मैं ये मन नहीं हूँ, तो मैं उन डिज़ायर्स को आते जाते देख सकता हूँ एज अ दृष्टा, एज अ साक्षी। फिर वो डिज़ायर्स मुझे नहीं खींचती, फिर वो डिज़ायर्स एक अलग हो जाती हैं, मैं अलग और वो डिज़ायर्स अलग। अब इससे हम क्या समझें? जो हमारी डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर्स हैं वहाँ पे, हमारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हम क्यों बार बार जन्म लिए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि द आइडेंटिफिकेशन इज़ विद दोज डिज़ायर्स। तुमने जैसे ही उसको मैं माना, वो तुम्हारी बन गई और तुम आ गए वापस। लेकिन जैसे ही तुम उसको साक्षी भाव मेंटेन कर पाते हो, तुम उसको नहीं अटैच हो पाते, तो फिर तुम देखते हो कि तुम्हारी डिज़ायर कभी थी ही नहीं। दोज डिज़ायर्स वर ओनली ऑफ द माइंड, यू वर ओनली अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर डिज़ायर एज योर ओन।
तो मोनिका, ये
करना
क्या? मन शरीर नहीं, ठीक, मैं शरीर हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, ये सब मन और बुद्धि, मतलब जब मन में आते तो हम बुद्धि से सोचते ना, अरे ये हमारा शरीर है ही नहीं, मतलब ये शरीर है मैं नहीं हूँ, ये हम मन और बुद्धि को ही तो सोचते ना, वही हमें भाव लाते हैं, ठीक है। तो फिर अब इसको कैसे, कौन मतलब मन को कैसे क्या करे, फिर मन क्या सोचे, और समझ गए मेरी बात की, मतलब
मैं, हाँ हाँ बिल्कुल समझ गई, बिल्कुल समझ गई। देखो सारी जो साधना है, जितने मार्ग हैं, उनका एक ही पर्पस है कि आपको वो जो मन, मतलब जो आत्मन है, जो सेल्फ है, वो आपकी जितनी भी ये है ना, अभी हमने वर्ड किया उपाधियाँ, उनसे अलग हो जाए, जो सुपर इम्पोजिशन हैं उनसे अलग हो जाए, ठीक है। तो ज्ञान मार्ग में क्या तरीका है? ज्ञान मार्ग में तरीका है उसके बारे में सोचना, समझना, उसके बारे में बार बार कॉन्टेम्पलेट करना उस चीज़ को कि कैसे। देखो जैसे मैंने बताया, ये समझना बहुत आसान है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इतना तो मैं इतना एज्यूम कर सकती हूँ, यहाँ पे सब इतना तो समझ गए होंगे, है ना, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। लेकिन क्या आपको बुद्धि से भी ये समझ में आ गया कि आप कैसे ये मन नहीं हो? ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया है ना। तो यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल करना है, कॉन्टेम्पलेट करना है, मनन करना ज़रूरी होता है। तभी मैंने बोला ये ज्ञान मार्ग बहुत डिफिकल्ट है। इवेंचुअली क्या होता है, सब कुछ करने के बाद सिर्फ बुद्धि बचती है, आपका जो आइडेंटिफिकेशन होता है फाइनली, दैट इज़ ओनली विद बुद्धि। और फिर क्या होता है, वो बुद्धि खुद से ही समझ जाती है। अगर वो इतना समझ जाती है तो वो उस पॉइंट पर आ जाती है जब वो जान जाती है कि मैं भी नहीं हूँ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बुद्धि ही जान जाती है और बुद्धि गिर जाती है, और जब बुद्धि गिर जाती है तब आप वो आत्मन हो जाते हो। ये है ज्ञान मार्ग का विषय, ठीक है। और यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया एक हम, और ये ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कर लिया कभी तो उतनी धीरे ही गाड़ी चलेगी, इसको बड़ा स्ट्रांगली ये रखना हमेशा कि कैसे, मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ। लेकिन मन अगर मैंने जाना नहीं कि मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, तो उससे हेल्प नहीं होगा, वो तो मंत्र जैसा हो जाएगा कि मैं ये मन नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं मन हूँ, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ मैं मन नहीं हूँ, उससे नहीं होगा। तो सोचो कि कैसे मैं मन नहीं हूँ, कैसे मैं मन नहीं हूँ, इसमें कुछ चीज़ें आएंगी आगे आत्मबोध में भी। तो ये है ज्ञान मार्ग का। इसीलिए मैं ये बात करती हूँ कि जो बाकी जो योगिक प्रोसेसेस हैं उनमें थोड़ा ईजी हो जाता है, जैसे अगर आप क्रिया योग करते हो, फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं क्रिया योग की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने क्रिया योग से किया है। क्रिया योग में क्या होता है, क्योंकि हम वो सांसों का एक सिस्टम होता है, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, उसको करते 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 एक दिन ऐसा हो जाता है कि आप अलग हो जाते हो और ये पूरा का पूरा जो सुपर इम्पोजिशन है वो अलग हो जाती है, तो वैसे ही पता पड़ जाता है। फिर आपको किसी को ज्ञान नहीं देना पड़ता, किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आप ये नहीं हो, आपको खुद से नजर आ जाएगा कि आप ये नहीं हो। जब हम भक्ति मार्ग की बात करते हैं, भक्ति क्या होता है, सरेंडर। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आप मंत्र जाप करें, कि आप बहुत सारा डिवोशनल होके गाते रहें या भावुक हो जाए, नहीं। भक्ति का मतलब होता है कि जो है मुझे वो सब कुछ एक्सेप्टेड है, मतलब कंप्लीट सरेंडर, 100% सरेंडर विदाउट एनी डाउट। और अगर जिस दिन जिसका भी 100% सरेंडर हो गया, उस दिन उसका आत्मन और ये अलग हो जाता है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच हैपन्स. जब आप देखते हो कि ये दो हो गए, आप अलग हो गए, और ये पूरा का पूरा जो सुपर इम्पोजिशन है, इट इज़ जैसे बोले ना कि लोहा और आग, अभी तो वो एक हैं, गर्म हुए हुए हैं, लेकिन लेट्स से एक दिन लोहा ठंडा हो गया, जिस दिन लोहा ठंडा हो जाएगा उस दिन उसको रियलाइज़ होगा कि अरे मैं तो गर्म हुई नहीं, मैं तो ठंडा ही था, है ना, वो तो हीट की वजह से लग रहा था कि मैं गर्म हूँ, मैं तो हमेशा से ठंडा था. तो बिल्कुल ऐसे ही दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं, इसीलिए हम अलग 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 मार्गों की बात करते हैं. तो यही तो जानना है,
ये अनुभव फिर अपने आप ही होगा,
अपने आप होगा. हाँ, बाकी हमें ये सब प्रोसेस,
जब तक अनुभव ही ना होगा तब तक हम इसको समझ नहीं सकते.
नहीं,
अपने रियलाइजेशन,
बिल्कुल बिल्कुल, अनुभव से ही होगा, अनुभव के बिना नहीं हो सकता, है ना. तो लेकिन हम क्यों फिर भी इतनी बातें करते हैं, इतनी सारी करते हैं, कि वो अनुभव के लिए जिज्ञासा तो होती जाए ना, वो जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है, चाह होनी बहुत ज़रूरी है कि मुझे वो चाहिए. और जितना हमारी चाह बढ़ती जाती है तो उतना हमारे लिए वो रास्ता खुलना ईजी हो जाता है. तो अगर अब आप लोगों को, जैसे आप बहुत सारे लोग हो जो अलग अलग चीज़ें भी कर रहे हो, है ना, क्रिया योग भी कर रहे हो या ये भी कर रहे हो, तो आपको ये भी देखना है कि मुझे कौन सा वाला बेटर लग रहा है, कौन सा मुझे ज़्यादा अपील कर रहा है, अंदर से आ रहा है ना. क्या मुझे एक योग करके जानना है या मुझे मनन करके जानना है. मनन की ज्ञान मार्ग पे बिना मनन किए नहीं होगा, मनन करना होगा कि कैसे मैं ये मन नहीं हूँ. कुछ चीज़ें आएंगी, हम लोग इसमें भी करेंगे, बाकी आपको खुद भी करना होगा इसके ऊपर मनन.
मोनिका, बट हाउ डू यू लाइक कम टू नो कि तुमने ये आइडेंटिफिकेशन छोड़ दी. लाइक अगर तुम देखो तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लाइक बहुत रिलीजियस भी हैं, बहुत हैं, या वो मतलब अगर आप उनके मुंह से सुनोगे तो वो यही कहते हैं, नहीं मेरा तो सब कुछ मेरे प्रभु ही है, सब कुछ प्रभु के थ्रू ही हो रहा है, मैं तो हुई नहीं. बोलते सब हैं बट आई डोंट नो लाइक वो उस लेवल पे होते हैं या नहीं होते, या वॉट इट इज, ये कहना बहुत मुश्किल है.
हमें दूसरों का जानना ही क्यों है दूसरा उस लेवल पे है या नहीं है, है ना. इट हैज नथिंग टू डू विद,
अपने लिए भी मे बी हम ओके यू नो लाइक ठीक है, जैसे अब हम कहने लगे बॉडी नहीं है, ये नहीं है, मे बी धीरे धीरे आगे और बढ़ जाएंगे, बट देन हाउ डू वी कम टू नो कि वी हैव एक्चुअली बीन एस्टैब्लिश्ड इट.
जब आपके सर में दर्द होता है आपको पता होता है आपके सर में दर्द है, या कोई और बताता है आपके सर में दर्द है. अगर मेरे सर में दर्द है या मेरे सर में दर्द नहीं भी है और मैं बोलती हूँ कि मेरे सर में दर्द है, डज इट मैटर कि मैं क्या बोल रही हूँ, या आपको चेक करना ज़रूरी है कि मेरे सर में दर्द है या नहीं है. हो सकता है मेरे सर में दर्द है और मैं बोल रही हूँ मेरे सर में दर्द है, हो सकता है मेरे सर में दर्द नहीं है और मैं बोल रही हूँ मेरे सर में दर्द है ना, क्या फ़र्क पड़ता है. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब आपके सर में दर्द है तो आपको क्या करना है उसके लिए, है ना, और वो खुद से ही पता पड़ता है. तो जब आप, ये एक ऐसी चीज़ है जब ये होगी आप खुद ही जान जाओगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद का ही अनुभव होता है. और दूसरे को वो अनुभव है या नहीं है ये हम कभी नहीं जान सकते, किसी का भी नहीं जान सकते, और हमें जानना भी क्यों है. इवन जब हम किसी की सुनते हैं या हम किसी और को गुरु मानते हैं तो भी हमें नहीं पता कि उसको ये अनुभव है या नहीं है. हम ये एज्यूम करके चलते हैं, ये हमारी एक अजम्पशन है. तो देखो जब हम गुरु बोलते हैं कि हम किसी को गुरु चुनेंगे या हम इसकी बात सुन रहे हैं, तो हम कैसे चेक करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं क्या उससे मेरी प्रगति हो रही है, क्या मुझे समझ में आ रहा है, क्या मुझे कोई नई चीज़ ऐसी मिल रही है या बात सही लग रही है. बस वही हमारा एक क्राइटेरिया हो सकता है, हम कभी भी नहीं जान सकते दूसरे का. तो होने दो, दूसरे जो भी कर रहे हैं वो भक्ति हैं, क्या हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हमें कुछ भी नहीं लेना. हमें सिर्फ अपने पे फोकस करना है कि हम जानते हैं कि नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे समझ में आया कि नहीं आया. और जब आपको समझ में आ जाएगा, देखो आज आपको नहीं समझ में आया हो और आप जाके 50 लोगों को बोलो कि मुझे समझ में आ गया है, उसमें से 25 लोग मान लेंगे कि आपको समझ में आ गया है, और 25 नहीं मानेंगे, उनको लगेगा कि नहीं ये तो झूठ बोल रही है. ओके, फिर लेट्स से आपको कल को समझ में आ गया, फिर आप जाके 50 लोगों को बोलो कि मुझे समझ में आ गया है, अभी भी 25 लोग मान लेंगे कि आपको आ गया और 25 लोग अभी भी सोचेंगे कि आपको नहीं आया है. सो आर वी गोइंग टू जज ऑल्सो आर सेल्स बाय यू नो वॉट अदर पीपल थिंक? नो, इट इज़ कम्प्लीटली माई ओन जर्नी, पर्सनल जर्नी. दूसरा क्या सोचेगा समझेगा या हम दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं समझ रहे हैं, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है. हमें सिर्फ अपनी जर्नी का देखना.